एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने, सच पूछिए तो, हमारी आज की दुनिया की नींव रखी है।
हाँ, बिल्कुल।
हम बात कर रहे हैं सर रिचर्ड इवांस की एक बहुत ही शानदार किताब द परस्यूट ऑफ पावर, यूरोप 1815-1914 के बारे में। ये वो 100 साल है जब यूरोप ने एक ऐसी जबरदस्त करवट ली कि भाई सब कुछ ही बदल गया।
बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी बीती हुई बात नहीं है। आप सोचिए, आज हम जिन चीजों की इतनी बात करते हैं, राष्ट्रवाद है ना,
हाँ,
औद्योगिक विकास, ग्लोबल इकोनॉमी, फिर ये सामाजिक बराबरी की जो लड़ाई है,
हाँ,
यहाँ तक कि देशों के बीच के जो तनाव हैं, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं आपको इसी 19वीं सदी के यूरोप में मिलेंगी। तो इवांस की किताब इसी शक्ति की खोज, मतलब पावर की जो तलाश थी, उसी की कहानी कहती है।
अच्छा।
और इसी तलाश ने उस पूरी सदी को चलाया और हमारी आज की दुनिया को एक तरह से शेप दिया है।
बिल्कुल।
तो इसे समझना मतलब अपनी ही दुनिया को बेहतर समझना है।
सही बात है। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी के जो सूत्रधार हैं, यानी लेखक, उनसे जरा मिलते हैं। सर रिचर्ड जे इवांस।
हाँ, ये ब्रिटेन के बहुत ही माने हुए सम्मानित इतिहासकार हैं
जी,
और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इतिहास के रेजियस प्रोफेसर जैसे, हाँ, बहुत बड़े ओहदे पर भी रह चुके हैं
जी। उनकी खास दिलचस्पी रही है 19वीं और 20वीं सदी के यूरोप और खासकर जर्मनी के इतिहास में।
हाँ, और उनकी सबसे जानी मानी किताबों में वो नाजी जर्मनी वाली 3 हिस्सों की जबरदस्त सीरीज है ना, द थर्ड राइक्स ट्रिलॉजी।
हाँ हाँ, सुना है उसके बारे में।
वो तो मतलब इस टॉपिक पर फाइनल वर्ड मानी जाती है एक तरह से। लेकिन इवेंट्स की खूबी सिर्फ ये अकादमिक गहराई ही नहीं है।
अच्छा।
वो जिसे हिस्ट्री फ्रॉम बिलो कहते हैं।
हिस्ट्री फ्रॉम बिलो,
मतलब इतिहास को सिर्फ राजाओं नेताओं की नजरों से नहीं देखना,
बल्कि आम लोगों जैसे किसान, मजदूर, औरतें, उनके अनुभवों से भी देखना। वो दिखाते हैं कि भाई बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाओं का असर एक आम इंसान की जिंदगी पर आखिर पड़ता कैसे था।
ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है।
बिल्कुल। उनकी लिखाई में गहराई भी है और पढ़ने में मजा भी आता है। वो मुश्किल बातों को भी बड़े दिलचस्प अंदाज में सामने रखते हैं।
चलिए तो अब किताब पर आते हैं, द परस्यूट ऑफ पावर। ये किताब हमें ले जाती है 1815 में, जब नेपोलियन की हार हुई, वहां से लेकर 1914 तक, जब पहला विश्व युद्ध शुरू होने वाला था
जी।
और ये पेंगुइन हिस्ट्री ऑफ यूरोप सीरीज का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि इसे इतिहास के छात्र तो पढ़ ही सकते हैं, आम लोग भी आसानी से समझ सकते हैं।
हाँ, ये इसकी खासियत है। और किताब का जो मूल विचार है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। इवांस कहते हैं कि ये जो लंबी 19वीं सदी थी, इसमें हर कोई हर तरफ बस शक्ति या पावर के पीछे भाग रहा था।
हर कोई मतलब सिर्फ सरकारें नहीं, नहीं नहीं, सिर्फ सरकारें नहीं, ये पावर सिर्फ फौजी या राजनीतिक ताकत नहीं थी, ये बहुत फैली हुई चीज थी।
अच्छा।
इसमें देखिए, उद्योगपतियों की आर्थिक शक्ति थी, जो नए नए कारखाने लगा रहे थे, पैसा बना रहे थे। इसमें उभरता हुआ जो मध्यम वर्ग था, जिसे बुर्जुआजी कहते हैं।
हाँ, ये बुर्जुआजी, ये नया मिडिल क्लास है ना।
बिल्कुल। जैसे बैंकर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, उनकी समाज और राजनीति में अपनी जगह बनाने की जबरदस्त चाहत थी। और इसी शक्ति की दौड़ में कमाल की बात यह है कि वो लोग भी शामिल थे जिनके पास पहले कोई शक्ति थी ही नहीं।
अच्छा, जैसे कौन लोग?
जैसे किसान, जो जमींदारों की गुलामी, जिसे सर्फडम कहते हैं, उससे आजादी चाहते थे।
हाँ।
औरतें, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगी थी, या फिर जातीय अल्पसंख्यक, जो बराबरी का दर्जा मांग रहे थे। यहां तक कि आप देखिए, कला और विज्ञान के जरिए सांस्कृतिक दबदबा बनाने की कोशिश, वो भी शक्ति की ही एक खोज थी। और हाँ, सबसे बड़ा तो वो यूरोपीय देशों की पूरी दुनिया पर कब्जा करने की होड़,
साम्राज्यवाद।
हाँ, साम्राज्यवाद, वो भी इसी पावर की तलाश का ही एक भयानक रूप था।
तो किताब का जो बड़ा सवाल है वो यही है कि भाई यूरोप, जो 1815 में नेपोलियन के युद्धों के बाद बिल्कुल थका हुआ था, ज्यादातर खेती पर निर्भर था, जहाँ पुराने रजवाड़ों और जमींदारों का बोलबाला था, वो 100 साल में इतना कैसे बदल गया? कैसे वो एक औद्योगिक, शहरी, दुनिया पर छा जाने वाला, लेकिन साथ ही अंदर से बेहद अस्थिर और विस्फोटक महाद्वीप बन गया, जो 1914 में एक भयानक विश्व युद्ध में कूद पड़ा।
बिल्कुल। और इवांस का जवाब यही है, ये सब हुआ शक्ति की इसी चौतरफा लगातार चलने वाली और अक्सर टकराव भरी खोज की वजह से।
तो चलिए इस बदलाव की कहानी को थोड़ा और खोलते हैं। किताब हमें अलग अलग पहलुओं से इस दौर को दिखाती है ना।
हाँ बिल्कुल, शुरुआत होती है 1815 के माहौल से। देखिए, दो बड़ी क्रांतियों का साया था यूरोप पर। एक तो फ्रांसीसी क्रांति, जिसने राजनीतिक भूचाल ला दिया था,
हाँ वो तो सब जानते हैं,
और दूसरी ब्रिटेन में जो शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति, वो धीरे धीरे पूरे महाद्वीप में फैल रही थी। इन दोनों क्रांतियों की यादें और उनका डर एक तरह से यूरोप पर छाया हुआ था।
हाँ, और तब वियना कांग्रेस हुई थी, जहां ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटर्निक जैसे जो पुराने नेता थे,
जी मेटर्निक,
उन्होंने कोशिश की कि क्रांति से पहले वाली जो राजशाही और कुलीन व्यवस्था थी उसे फिर से जमाया जाए। उन्होंने लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जैसे नए विचारों को तो खतरनाक मानकर दबाने की पूरी कोशिश की, पर क्या ये कोशिश कामयाब हुई?
देखिए, पूरी तरह तो नहीं, और यहीं से उस सदी का जो केंद्रीय तनाव है वो शुरू होता है। एक तरफ पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने की जिद थी, और दूसरी तरफ बदलाव की जोरदार लहरें थीं। ये टकराव हमें पूरी किताब में बार बार दिखता है।
हाँ।
और बदलाव का शायद सबसे बड़ा इंजन जो था वो अर्थव्यवस्था थी। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति की दूसरी लहर आई। कोयला, लोहा और सबसे बढ़कर भाप के इंजन ने सब कुछ बदल डाला।
और इसमें रेलवे का क्या कमाल रहा होगा? मैंने सुना है उसने तो दुनिया ही बदल दी थी।
अरे बिल्कुल, रेलवे ने तो जैसे दूरियां ही मिटा दी। चीजों और लोगों का आना जाना इतना आसान हो गया, इससे राष्ट्रीय बाजार बनने लगे, जमीन का पूरा नक्शा ही बदल गया, शहर बड़े होने लगे, फैक्ट्री सिस्टम आया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और फाइनेंस का जाल फैला, और यूरोप देखते ही देखते दुनिया की आर्थिक राजधानी बन गया। ये यूरोप की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा स्रोत था कह सकते हैं।
लेकिन इस तरक्की की कीमत कौन चुका रहा था? मतलब आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा था?
हाँ, ये इसका दूसरा और काफी स्याह पहलू है। लाखों लाख लोग गांव से भागकर शहरों में काम की तलाश में आए। लेकिन इन नए औद्योगिक शहरों में हालात अक्सर बहुत ही बुरे थे। भयानक भीड़भाड़, गंदगी, बीमारियां फैलती रहती थी। और यहीं एक नया वर्ग पैदा हुआ, प्रोलिटारियत, यानी फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर वर्ग। ये वो लोग थे जिनके पास अपनी मेहनत बेचने के सिवा कुछ भी नहीं था, और धीरे धीरे इसी वर्ग ने अपने हकों के लिए आवाज उठानी शुरू की। यहीं से ट्रेड यूनियन आंदोलनों की शुरुआत हुई।
तो मतलब एक तरफ वो अमीर होते उद्योगपति और बैंकर यानी बुर्जुआजी,
हाँ,
और दूसरी तरफ ये नया मजदूर वर्ग प्रोलेटारियत, समाज का पूरा ढांचा ही बदल रहा था।
ये बुर्जुआजी या मध्यम वर्ग इस सदी की बड़ी ताकत बना। उनके जो मून्य थे, जैसे कड़ी मेहनत, अपनी काबिलियत पर भरोसा, समाज में मान सम्मान, यू नो रिस्पेक्टेबिलिटी, ये उस जमाने के आदर्श बन गए। वहीं जो पुराना जमींदार वर्ग था, उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। हालांकि वो अभी भी काफी असरदार थे, और शहरों में गरीबों की एक बहुत बड़ी आबादी थी जो बहुत ही मुश्किल हालात में जी रही थी। भीड़ भरे गंदे शहर बीमारियों के गढ़ थे, हैजा जैसी महामारियां तो बार बार फैलती थी।
बाप रे।
और इस नए माहौल ने परिवार के रिश्तों, मर्दों और औरतों की भूमिकाओं और समाज के जो नैतिक नियम थे उनको भी जबरदस्त चुनौती दी।
लेकिन आपने शुरू में एक बहुत दिलचस्प बात कही थी कि शक्ति की खोज सिर्फ ताकतवर लोग ही नहीं कर रहे थे, जिनके पास शक्ति नहीं थी वो भी इसे हासिल करना चाहते थे। ये मुझे बहुत अहम लगा।
हाँ, और ये किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे इवांस कहते हैं मुक्ति की राह। ये सदी सिर्फ शोषण की कहानी नहीं है, बल्कि आजादी की लड़ाई की भी कहानी है।
अच्छा, कैसे?
जैसे पूर्वी यूरोप में करोड़ों किसान सर्फडम यानी भूदासता के शिकार थे, मतलब वो जमीन के साथ बंधे हुए थे, एक तरह से जमींदार की संपत्ति।
ओह।
रूस में 1861 में जार ने इन करोड़ों सर्फों को आजाद कर दिया। सोचिए, ये कितनी बड़ी घटना थी।
हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात हुई होगी। और गुलामी यानी स्लेवरी का क्या हुआ?
दुनिया भर में गुलामी के खिलाफ जोरदार आंदोलन चले, और आखिरकार ज्यादातर यूरोपीय ताकतों ने कम से कम कानूनी तौर पर इसे खत्म कर दिया। इसी तरह यहूदी लोगों को यूरोप के कई देशों में कानूनी बराबरी मिली। हालांकि ये भी सच है कि समाज में उनके साथ भेदभाव फिर भी बना रहा, और कहीं कहीं तो ये बढ़ा भी।
ये जटिलता है।
बिल्कुल, और ये वो सदी थी जब महिलाओं ने संगठित होकर अपनी आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने शिक्षा का अधिकार मांगा, नौकरी करने का अधिकार मांगा, और सबसे बढ़कर वोट देने का अधिकार मांगा।
ये नारीवादी आंदोलन की शुरुआत थी।
तो ये एक तरह का विरोधाभास जैसा लगता है। एक तरफ आजादी की इतनी सारी बातें, दूसरी तरफ औद्योगिक मजदूरों का वो भयानक शोषण, और फिर बाद में साम्राज्यवाद भी।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इवांस यही दिखाते हैं कि प्रगति कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। आजादी और दमन, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही थीं। इसी दौर में कला, साहित्य और विचारों में भी बड़ी हलचल थी। रोमांटिकतावाद का जोर था।
रोमांटिकतावाद, ये क्या था? अच्छा, और धर्म एक तरह का कलात्मक और दार्शनिक आंदोलन था जो ज्ञानोदय या एनलाइटनमेंट के तर्क और बुद्धिवाद के खिलाफ भावनाओं, प्रकृति की सुंदरता और व्यक्ति के अनोखेपन पर ज्यादा जोर देता था।
अच्छा, और धर्म, औद्योगिक क्रांति और इन नए वैज्ञानिक विचारों के दौर में धर्म की क्या जगह बची थी? क्या उसका असर कम हो रहा था?
देखिए, धर्म की भूमिका बहुत जटिल थी। एक तरफ हाँ, शहरों में और पढ़े लिखे लोगों के बीच धर्म का असर कम हो रहा था, जिसे हम धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलराइजेशन कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के लिए धर्म अब भी जिंदगी का केंद्र था, और कई बार तो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को धर्म से ही ताकत मिलती थी।
अच्छा,
और फिर आया विज्ञान का वो बड़ा धमाका, चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत।
हाँ, एवोल्यूशन थ्योरी।
उसने तो पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं की जड़ें हिला दी। 19वीं सदी के आखिर में विज्ञान और आस्था के बीच का ये टकराव एक बड़ा सांस्कृतिक मुद्दा बन गया था।
ये तो हुई समाज और संस्कृति की बातें। अच्छा, अब राजनीति में क्या चल रहा था? वो जो पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था थी, वो कब तक टिकी रही?
ज्यादा देर नहीं टिक पाई। मुख्य लड़ाई पुरानी राजशाही और जमींदारी व्यवस्था बनाम उदारवाद और राष्ट्रवाद के नए विचारों के बीच थी, और इसका सबसे बड़ा विस्फोट हुआ 1848 में।
1848, क्या हुआ था तब?
पूरे यूरोप में क्रांतियों की जैसे लहर दौड़ गई। इसे जनताओं का वसंत, स्प्रिंग टाइम ऑफ द पीपल्स भी कहते हैं। कहीं लोग संविधान और ज्यादा राजनीतिक अधिकार मांग रहे थे, तो कहीं अलग अलग राष्ट्रीय समूह अपनी आजादी और अपना अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे। मतलब भारी उथल पुथल थी।
पर मैंने सुना है कि ये क्रांतियां तो ज्यादातर दबा दी गई थीं। फिर इनका क्या महत्व रहा?
हाँ, फौरी तौर पे तो इन्हें कुचल दिया गया, सेना ने दबा दिया। लेकिन इवांस तर्क देते हैं कि 1848 एक निर्णायक मोड़ था। भले ही क्रांतियां असफल रहीं, उन्होंने पुरानी रूढ़िवादी सहमति को हमेशा के लिए तोड़ दिया।
अच्छा,
उन्होंने ये दिखा दिया कि आम जनता भी राजनीति में एक ताकत है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और उन्होंने वो सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब अगले 50 सालों में खोजा गया। इसी के बाद राजनीति का अंदाज बदला और रियल पॉलिटिक यानी यथार्थवादी राजनीति का दौर शुरू हुआ।
रियल पॉलिटिक, ये क्या चीज है? मतलब थोड़ा समझाएंगे?
इसका मतलब है ऐसी राजनीति जो आदर्शों या सिद्धांतों पर नहीं चलती, बल्कि सीधे सीधे राष्ट्रीय हित, ताकत और व्यवहारिक जरूरतों पर आधारित होती है। मतलब जो प्रैक्टिकल है वो करो।
अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स।
हाँ, कह सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे प्रशिया के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क।
हाँ, बिस्मार्क, जर्मनी को एक करने वाले, उनका नाम तो बहुत सुना है।
बिल्कुल, 1848 के बाद के दौर में ही इटली का एकीकरण हुआ, जिसका श्रेय कैवूर और गैरिबाल्डी जैसे नेताओं को जाता है। और बिस्मार्क ने लौह और रक्त यानी युद्ध और कूटनीति के जरिए जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में खड़ा किया। लेकिन यहां एक और बड़ा बदलाव आया राष्ट्रवाद में।
वो क्या था?
राष्ट्रवाद का चरित्र ही बदल गया। देखिए, शुरू में ये उदारवादी विचारकों का नारा था जो जनता की आजादी और संप्रभुता से जुड़ा था।
जी,
मतलब नीचे से ऊपर उठने वाला विचार।
हाँ।
लेकिन अब बिस्मार्क जैसे नेताओं ने इसे ऊपर से थोपना शुरू कर दिया। राष्ट्रवाद अब जनता को सरकार के प्रति वफादार बनाने, उन्हें सेना में भर्ती करने और दूसरे देशों पर हमले को सही ठहराने का एक शक्तिशाली हथियार बन गया।
ये बहुत खतरनाक मोड़ था। समझ रही हूँ। तो घर में ताकत जमाने के बाद यकीनन यूरोपीय देश बाहर की तरफ मुड़े होंगे, फिर वो साम्राज्यवाद का दौर आया।
एकदम सही। 1880 के दशक के बाद शुरू हुआ नया साम्राज्यवाद, खासकर अफ्रीका महाद्वीप को लेकर तो ऐसी छीना झपटी मची जिसे स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहते हैं।
स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका,
मतलब कुछ ही सालों में पूरे अफ्रीका को यूरोपीय ताकतों ने आपस में बांट लिया। एशिया में भी उनका दबदबा बहुत बढ़ गया।
इस अंधाधुंध विस्तार के पीछे क्या वजह थी? सिर्फ जमीन का लालच था या कुछ और भी था?
वजहें कई थीं और काफी मिली जुली थीं। आर्थिक वजहें थीं, नए बाजार चाहिए थे, कच्चा माल चाहिए था। रणनीतिक वजहें थीं, दूसरी यूरोपीय ताकतों से आगे निकलने की होड़ थी, जियोपॉलिटिक्स। और वैचारिक वजहें भी थी।
वैचारिक मतलब?
उस दौर में सोशल डार्विनिज्म जैसे नस्लवादी सिद्धांत बहुत लोकप्रिय हो गए थे।
सोशल डार्विनिज्म, ये डार्विन के सिद्धांत से कैसे जुड़ा है? क्या मतलब है इसका?
देखिए, ये डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के विचार का समाज पर एक बहुत ही गलत और खतरनाक इस्तेमाल था।
अच्छा।
माना जाने लगा कि यूरोपीय नस्लें दूसरी नस्लों से बेहतर हैं, ज्यादा फिट हैं, और इसलिए उन्हें दुनिया पर राज करने का एक प्राकृतिक अधिकार है। ये साम्राज्यवाद को सही ठहराने का एक कथित वैज्ञानिक तरीका बन गया था।
ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक सोच है।
बिल्कुल। तो ये जो वैश्विक शक्ति की खोज थी, ये यूरोप की ताकत का चरम तो थी, लेकिन साथ ही ये यूरोपीय देशों के बीच दुश्मनी और बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण भी बनी।
और शायद यही दुश्मनी आखिरकार पहले विश्व युद्ध तक ले गई।
किताब का अंतिम हिस्सा इसी भयानक अंत की कहानी कहता है। इवांस कहते हैं कि पहला विश्व युद्ध होना एकदम तय नहीं था, मतलब उसे टाला जा सकता था, लेकिन कई सारी चीजें एक साथ मिल गईं जिसने युद्ध को लगभग कह सकते हैं अवश्यंभावी बना दिया।
जैसे कि क्या चीजें थी वो?
जैसे पूरा यूरोप दो कट्टर फौजी गुटों में बट गया था, ट्रिपल अलायंस बनाम ट्रिपल एंटेंट। हथियारों की एक भयानक दौड़ शुरू हो गई थी, खासकर ब्रिटेन और जर्मनी के बीच नौसेना बनाने की होड़। दुनिया भर में उपनिवेशों के लिए दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। राष्ट्रवाद का वो आक्रामक, दूसरों से नफरत करने वाला रूप ले चुका था, खासकर बालकन जैसे अस्थिर इलाकों में जहाँ कई कौमें आपस में उलझी हुई थी।
हाँ, बालकन तो हमेशा से ही एक हॉटस्पॉट रहा है।
बिल्कुल। और कुछ देशों में अंदरूनी सामाजिक और राजनीतिक तनाव इतने बढ़ गए थे कि वहां की सरकारों को लगा कि शायद एक विदेशी युद्ध लोगों का ध्यान भटकाने का अच्छा तरीका हो सकता है।
तो मतलब जिन ताकतों ने यूरोप को 100 साल तक आगे बढ़ाया, वो औद्योगिक ताकत, वो राष्ट्रवाद, वो ताकतवर सरकारें, उन्हीं ने मिलकर एक ऐसी विस्फोटक मशीन तैयार कर दी जो 1914 में फट पड़ी।
बिल्कुल।
कितना दुखद है, कितना विरोधाभासी है।
बिल्कुल, ये इस युग का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अगर हम इस पूरी कहानी के मुख्य सबक या संदेश देखें तो पहला तो यही है कि शक्ति की ये खोज कितनी बहुआयामी थी। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैश्विक, ये सिर्फ सरकारों का खेल नहीं था।
सही।
दूसरा, फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति की जो जुड़वा विरासतें थीं, उन्होंने पूरी सदी को कैसे चलाया।
तीसरा, वो मध्यम वर्ग यानी बुर्जवाजी का उदय और उसके मूल्यों का कितना गहरा प्रभाव पड़ा।
चौथा, राष्ट्रवाद का वो बदलना एक आजादी के सपने से शुरू होकर कैसे वो युद्ध भड़काने वाली आक्रामक विचारधारा बन गया, ये आज भी बहुत प्रासंगिक है।
पांचवा, मुक्ति की लड़ाई ये जरूरी थी पर हमेशा अधूरी रही और विरोधाभासों से भरी रही। जैसे गुलामी खत्म हुई तो औद्योगिक शोषण और उपनिवेशवाद के नए रूप आ गए। छठा, यूरोप का दुनिया पर छा जाना, लेकिन ये दबदबा अंदरूनी दुश्मनी और भयानक होड़ पर टिका था।
और सातवां, जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, कि इतिहास सिर्फ बड़े नेताओं या बड़ी घटनाओं से नहीं बनता, आम लोगों के संघर्ष, उनके सपने, उनकी जिंदगियां भी उतनी ही मायने रखती हैं। इवांस इन दोनों को बखूबी जोड़कर दिखाते हैं।
हाँ, किताब में कुछ विचार वाकई हमें रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे ये वाला कि 19वीं सदी को खुशी के नहीं बल्कि शक्ति के तलाश ने परिभाषित किया, और ये तलाश सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं थी, ये पूरे समाज में फैली हुई थी हर स्तर पर।
हाँ, ये किताब का सार है एक तरह से, और वो 1848 की क्रांतियों वाला विचार भी बहुत गहरा है कि वो इतिहास का वो मोड़ था जहां इतिहास मुड़ने से चूक गया, पर उसके झटके दशकों तक लगते रहे। बाद के सारे बड़े बदलाव, जर्मनी का एकीकरण, समाजवाद का उदय, कहीं ना कहीं 1848 के उन अनसुलझे सवालों के ही जवाब थे। और साम्राज्यवाद वाला नुक्ता भी बहुत अहम है कि ये सिर्फ बाहर जाकर ताकत दिखाना नहीं था, बल्कि ये यूरोप की अंदरूनी चिंताओं, उनकी आपसी प्रतिद्वंदिताओं और उनकी आर्थिक जरूरतों का ही बाहरी रूप था। उपनिवेश एक तरह से यूरोप के तनावों को बाहर निकालने का, या कहें कि एक्सपोर्ट करने का जरिया बन गए थे।
बिल्कुल। और शायद सबसे संजीदा करने वाला विचार ये है कि 1914 तक यूरोप ने तरक्की के शिखर छू लिए थे, विज्ञान में, तकनीक में, दुनिया से जुड़ाव में, लेकिन जिन चीजों ने ये तरक्की दी, वही औद्योगिक ताकत, वही कट्टर राष्ट्रवाद, वही फौजी गठबंधन, उन्हीं ने मिलकर तबाही का ऐसा इंतजाम भी कर दिया था जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था, एक मशीन जो युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी।
इस लंबे और जटिल इतिहास से आज हम क्या सीख सकते हैं? क्या ये आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है? मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा। पहली बात तो राष्ट्रवाद को समझने में ये बहुत मदद करता है। कैसे राष्ट्रवाद लोगों को जोड़ने वाली एक सकारात्मक ताकत से बदलकर बांटने वाली और आक्रामक बन सकती है। या दुनिया भर में जो राष्ट्रवाद और लोक लुभावनवाद का उभार दिख रहा है, उसे समझने के लिए एक जरूरी सबक है।
और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की जड़ें भी तो इसी दौर में है ना?
बिल्कुल। 19वीं सदी बड़े पैमाने पर वैश्वीकरण का पहला दौर था। व्यापार का फैलना, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, विचारों का फैलना, यह हमें समझने में मदद करता है कि आज का जो ग्लोबलाइजेशन है और उसके प्रति जो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, उनकी एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है।
एक और बात जो मुझे बहुत शिद्दत से महसूस हुई पढ़ते हुए, वो है तकनीकी बदलाव से समाज में जो उथल पुथल मचती है। जैसे औद्योगिक क्रांति ने नौकरियां छीनी, शहरों में भीड़ बढ़ाई, लोगों को अपनी जड़ों से काटा, नए सामाजिक संघर्ष पैदा किए, कुछ वैसा ही शायद आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल क्रांति के दौर में महसूस कर रहे हैं।
आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। ये हमें याद दिलाता है कि तकनीकी तरक्की हमेशा एक सीधी सपाट चीज नहीं होती, उसके हमेशा सामाजिक नतीजे होते हैं। कुछ लोग फायदे में रहते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं। और हाँ, 19वीं सदी के किसानों, मजदूरों, औरतों के जो संघर्ष थे, वो आज भी दुनिया भर में सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे आंदोलनों को प्रेरणा देते हैं। वो दिखाते हैं कि हक और अधिकार मिलते नहीं हैं, उन्हें लंबे और कठिन संघर्ष से जीतना पड़ता है।
और शायद सबसे बड़ी चेतावनी जो इस इतिहास से मिलती है, वो बड़ी ताकतों के बीच की प्रतिद्वंदिता को लेकर है। जिस तरह 19वीं सदी की ये होड़ और आपसी अविश्वास पहले विश्व युद्ध तक ले गया, वो आज की दुनिया के लिए एक बहुत गंभीर सबक है कि कैसे एक स्थिर दिखती हुई व्यवस्था भी बहुत जल्दी विनाशकारी संघर्ष में बदल सकती है अगर हमने ध्यान नहीं दिया।
तो कुल मिलाकर इस किताब से मेरे लिए जो सबसे बड़ा सबक है, वो ये है कि हमारी आज की दुनिया की लगभग हर चीज़, हमारे राजनीतिक विचार, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा देश, हमारा आपसी जुड़ाव, यहाँ तक कि हमारे आपसी तनाव, इन सब की जड़ें 19वीं सदी की शक्ति की इस अनवरत अथक खोज में हैं। हम अनजाने में ही सही उसी इतिहास की लंबी परछाई में जी रहे हैं।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि प्रगति और शक्ति अक्सर दो धारी तलवार साबित होती हैं। 19वीं सदी में जबरदस्त तरक्की हुई, इसमें कोई शक नहीं। विज्ञान आगे बढ़ा, नई तकनीकें आईं, आज़ादी की लड़ाइयां लड़ी गईं और जीती भी गईं। लेकिन इन्हीं चीज़ों ने, इन्हीं ताकतों ने नई तरह की असमानताएं पैदा की, शोषण के नए तरीके ईजाद किए और तबाही के नए, ज़्यादा भयानक हथियार भी पैदा किए। शायद इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि शक्ति की इस खोज को विवेक और जिम्मेदारी के साथ कैसे साधा जाए।
बिल्कुल सही कहा। शक्ति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे वैसा बनाता है। ये संतुलन साधना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।